फासीवाद की आर्थिक व्यवस्था, निगमनात्मक राज्य, कॉर्पोरेट स्टेट। आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद व्यक्तिवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मध्यम मार्ग को ग्रहण करता है। यह ना तो व्यक्तिवादियों की भांति आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता और उनके निर्वाध अधिकार को स्वीकार करता है और ना ही समाजवादियों की भांति राज्य शक्ति के आधार पर आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न करता है। मुसोलिनी के आर्थिक विचारों पर फ्रांस के संघवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव था। मुसोलिनी फासिस्ट राज्य को संघ राज्य कहता है और अपने संघ राज्य की अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के हित में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता है। फासीवादियों की अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप में दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला संघ व्यवस्था तथा दूसरा निगम। प्रत्येक व्यवसाय के प्रत्येक जिले में दो सिंडिकेट बनाए गए, उनमें एक संबद्ध व्यवसाय के मालिक का तथा दूसरा मजदूरों का होता था। इन स्थानीय संघों का संबंध राष्ट्रीय संघों से जोड़ा गया और इन राष्ट्रीय संघों को महासंघों से संबंध किया गया। पहले इन महासंघों की संख्या 6 थी, जो बाद में 13 कर दी गई। कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा बैंकिंग से संबंधित एक संघ महासंघ मालिकों एवं एक एक महासंघ श्रमिकों के थे। कलाकारों का भी एक महासंघ स्थापित किया गया। इन संस्थाओं सिंडिकेट, राष्ट्रीय संघ तथा महासंघ का कार्य श्रमिकों तथा मालिकों के झगड़े को निपटाना तथा सामूहिक ठेके आदि लेना था। हड़ताल तथा तालाबंदी इटली में अवैध थी। यदि किसी को पंच फैसलों के निर्णय अमान्य होते तो अंतिम निर्णय के लिए राजकीय श्रमिक न्यायालयों में अपील की जा सकती थी। सिंडिकेट की सदस्यता ऐच्छिक रखी गई थी, किंतु सिंडिकेटों द्वारा गैर सदस्यों के हितों का भी प्रतिनिधित्व किया जाता था। राज्य के द्वारा फासीवादी विचारधारा की समर्थक सिंडिकेटों को ही मान्यता प्रदान की जाती थी। सिंडिकेट के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक थी कि वे योग्य, चरित्रवान और राष्ट्रभक्त हों और दूसरों को भी ऐसा ही पाठ पढ़ाएं। इन सिंडिकेटों के अतिरिक्त 4 फरवरी को फासीवाद की सरकार ने प्रत्येक व्यवसाय से संबंधित निगमों की भी स्थापना की। इस प्रकार के निगमों की कुल संख्या 22 थी। प्रत्येक निगम में 3 प्रकार के सदस्य होते थे, श्रमिकों के प्रतिनिधि, पूंजीपतियों के प्रतिनिधि और राज्य के प्रतिनिधि। श्रमिकों तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधि यथार्थ में राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को उपभोक्ता को प्रतिनिधि भी कहा जाता था। प्रत्येक निगम को अपने निर्णय पर सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक थी। यह व्यवस्था भी की गई थी कि श्रमिकों के विवाद को श्रमिक न्यायालयों में भेजने से पूर्व उन्हें समझौता मंडल के सम्मुख भेजना आवश्यक था। मैक्सी का मत है कि निगम की व्यवस्था फासिस्ट वस्त्र पहने हुए श्रम संघ वाद है, परंतु इस प्रकार के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फासिस्ट निगम प्रणाली और श्रमिक संघवाद में आधारभूत अंतर है। फासिस्ट निगम प्रणाली में श्रम संघवाद की पूंजी विरोधी और राजनीति विरोधी भावनाओं को नहीं अपनाया गया। श्रम संघवाद के मजदूर संघ, वर्ग संघ के लिए बनाए गए वहां फासिस्ट संघों का निर्माण समुदायों में सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए और समस्त आर्थिक व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। श्रमिक संघवाद में केंद्रीय स्थान श्रमिक संघों का है। फासिस्ट निगमनात्मक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान राज्य का है। फासिस्ट निगम प्रणाली श्रेणी समाजवादियों की श्रेणी व्यवस्था से भी दूर है। वास्तव में इस प्रकार की समस्त निगमनात्मक व्यवस्था राज्य के ही अधिकार में थी। प्रोफेसर जोर्ड ने इस संबंध में लिखा है कि फासीवादी व्यवस्था के अंतर्गत निगम राज्य के अधीन होने चाहिए और जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और उसके विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इस व्यवस्था से इटली की आर्थिक व्यवस्था पर फासिस्ट का राज्य पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि 22 निगमों की राष्ट्रीय परिषद की केंद्रीय समिति में न केवल फासिस्ट दल का महामंत्री तथा राज्य के मंत्री शामिल होते थे, वरन शासन का अध्यक्ष मुसोलिनी स्वयं इसका सभापति होता था।